रात अब गहरी हो चुकी थी। कमरे की घड़ी 12 बजने का इशारा कर रही थी। कुछ देर तक दोनों चुप बैठी रहीं। फिर अदिति ने धीरे से उठते हुए कहा, अच्छा अक्षरा, बहुत रात हो गई है, आपको भी आराम करना चाहिए। अक्षरा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, हाँ शायद। अदिति दरवाजे की तरफ बढ़ी। जाते जाते उसने पलटकर अक्षरा की तरफ देखा। गुड नाइट, अक्षरा ने भी मुस्कुराकर कहा। गुड नाइट अदिति। अदिति कमरे से बाहर चली गई। दरवाजा बंद होते ही कमरे में फिर वही सन्नाटा उतर आया। अक्षरा कुछ देर तक वहीं बैठी रही। उसके मन में अभी भी अदिति की बात गूंज रही थी। आप पापा से शादी करना चाहती थीं? उसने धीरे से आंखें बंद कर लीं। पुरानी यादें जैसे फिर से सामने आने लगी थीं। लेकिन कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और लाइट बंद कर बिस्तर पर लेट गई। धीरे धीरे पूरा घर नींद में डूब गया। दूसरी तरफ विश्वनाथ अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक उसकी सांसें तेज होने लगीं। उसके माथे पर पसीना आ गया। वो नींद में जैसे किसी को देख रहा था। सपने में एक चेहरा सामने आया, श्यामली। वही मुस्कान, वही आंखें, वही आवाज। सपने में श्यामली उसके सामने खड़ी थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। विश्वनाथ अचानक झटके से उठ बैठा। नहीं, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। कमरे में अंधेरा था और सिर्फ उसकी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने माथे पर हाथ फेरा, फिर गुस्से में बिस्तर से उतरकर खिड़की के पास चला गया। बाहर रात बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसके अंदर जैसे तूफान उठ रहा था। उसने दांत भींचते हुए धीरे से कहा, कहां से चली आती हो तुम? उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। तुम मेरे सपनों में नहीं आ सकती, समझी? उसकी मुट्ठियां कस गईं, जैसे किसी पुराने दर्द ने फिर से उसे जगा दिया हो। कुछ देर तक वो खिड़की के पास खड़ा रहा, फिर धीरे से वापस आकर बिस्तर पर बैठ गया। लेकिन अब उसकी आंखों से नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। कमरे में सन्नाटा था और उसके मन में पुराने जख्मों की हलचल। अगली सुबह शहर की सड़कों पर रोज की हलचल शुरू हो चुकी थी। ऑफिसों में लोग आ जा रहे थे। एक बड़ी कांच की बिल्डिंग के सामने गाड़ियां रुक रही थीं। यहीं काम करती थीं श्यामली। वो आज भी हमेशा की तरह समय पर ऑफिस पहुंची थी। उसने हल्के रेड रंग का प्लाजो सूट पहना हुआ था और बाल सलीके से पीछे बंधे हुए थे। अपने केबिन में जाकर उसने बैग रखा और कंप्यूटर ऑन कर दिया। तभी ऑफिस बॉय आकर बोला, मैडम, बॉस ने आपको केबिन में बुलाया है। श्यामली ने सिर उठाकर पूछा, अभी? जी मैडम। ठीक है, मैं आती हूँ। वो उठी और फाइल हाथ में लेकर बॉस के केबिन की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर हल्के से नॉक किया। मे आई कम इन सर? अंदर से आवाज आई, कम इन। दरवाजा खोलकर श्यामली अंदर आई। अंदर उसके बॉस मृदुल अपनी कुर्सी पर बैठे थे। मृदुल ने उसे देखते ही कहा, आओ श्यामली, बैठो। श्यामली सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। जी सर, आपने बुलाया? मृदुल ने टेबल पर रखा एक लिफाफा उठाया। हाँ, कंपनी की तरफ से एक अपडेट आया है। उसने वो लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया। तुम इसे पढ़ लो। श्यामली ने थोड़ा हैरान होकर लिफाफा लिया। जी सर। उसने धीरे से उसे खोला। अंदर एक आधिकारिक लेटर था। उसने पढ़ना शुरू किया। पहली लाइन पढ़ते ही उसकी भौंहें हल्की सिकुड़ गईं। उसमें लिखा था, आपको कंपनी के दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर किया जा रहा है। श्यामली ने आगे बढ़ा। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। जैसे जैसे वो लाइनें पढ़ती गईं, उसके चेहरे पर हैरानी और उलझन बढ़ती गई। फिर उसकी नज़र उस लाइन पर जाकर रुक गई, नई कंपनी का नाम। उसने दोबारा ध्यान से पढ़ा और अगले ही पल उसके हाथ जैसे ठिठक गए। उसकी आंखें फैल गईं। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसने धीरे से सिर उठाकर मृदुल की तरफ देखा, फिर वापस उस लेटर की तरफ। उस पर साफ लिखा था, विश्वनाथ सिंह राठौड़। श्यामली का गला सूख गया। वो कुर्सी पर जमी रह गई। उसके दिमाग में जैसे एक साथ हजारों ख्याल दौड़ पड़े। ये कैसे? उसने फिर से लेटर पढ़ा, लेकिन नाम वही था, वही कंपनी, वही इंसान जिससे वो 3 महीने पहले दूर चली गई थी, जिसका नाम सुनना भी उसने जैसे बंद कर दिया था, और अब उसे उसी की कंपनी में भेजा जा रहा था। श्यामली के हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसने धीरे से कुर्सी की पकड़ मजबूत कर ली। उसकी आंखों में साफ घबराहट थी। मृदुल उसकी हालत देख रहा था, लेकिन श्यामली के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, विश्वनाथ। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा उतर आया और उसी पल श्यामली को महसूस हुआ शायद किस्मत उसे फिर उसी रास्ते पर खींच कर ले जा रही थी जिससे बचने के लिए उसने 3 महीने पहले सब छोड़ दिया था। श्यामली कुछ पल तक उस लेटर को देखती रही। उसके चेहरे पर साफ हैरानी थी। फिर उसने धीरे से सिर उठाकर मृदुल की तरफ देखा। मृदुल ने शांत नजरों से उसे देखा। श्यामली ने लेटर टेबल पर रखते हुए कहा, मिस्टर राठौर की कंपनी तो अलग है, वो आपकी कंपनी नहीं है, फिर मेरा ट्रांसफर वहां कैसे हो सकता है? कमरे में हल्की खामोशी छा गई। मृदुल कुर्सी पर थोड़ा पीछे टिक गया। उसने गहरी सांस ली, जैसे उसे पता था कि ये सवाल आएगा। फिर धीरे से बोला, श्यामली, हाँ ये सच है कि वो मेरी कंपनी नहीं है। श्यामली ध्यान से सुन रही थी। मृदुल आगे बोला, लेकिन ये ट्रांसफर सामान्य तरीके से नहीं हुआ है। श्यामली की भौंहें हल्की सिकुड़ गईं। मतलब? मृदुल ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, विश्वनाथ राठौर चाहते थे कि तुम वहां काम करो। ये सुनते ही श्यामली का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। क्या? उसके मुंह से धीरे से निकला। मृदुल ने सिर हिलाया, हाँ। फिर उसने थोड़ा गंभीर होकर कहा, और सच कहूं तो उनके मुझ पर बहुत एहसान है। श्यामली चुप रही। मृदुल बोला, कभी मेरी कंपनी बहुत बुरी हालत में थी। उस वक्त अगर विश्वनाथ ने मदद ना की होती तो शायद आज ये कंपनी भी नहीं होती। उसने हल्की सांस छोड़ी, इसलिए मैं उनकी बात टाल नहीं पाया। श्यामली का चेहरा अब थोड़ा सख्त हो गया था। वो तुरंत बोली, लेकिन सर ये गलत है। मृदुल ने भौं उठाई। गलत? श्यामली ने गंभीर स्वर में कहा, मैं टेक्सटाइल डिजाइन में काम करती हूं और उनकी फैक्ट्री तो रॉ मटेरियल बनाती है, वहां मेरा काम ही क्या होगा? मृदुल हल्का सा मुस्कुराया, जैसे उसे इस सवाल का जवाब पहले से पता हो। वो बोला, हाँ श्यामली, पहले उनकी फैक्ट्री सिर्फ रॉ मटेरियल बनाती थी। श्यामली चुपचाप उसे देखती रही। मृदुल ने आगे कहा, लेकिन अब उन्होंने नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, टेक्सटाइल और फैशन लाइन। श्यामली की आंखों में फिर से हैरानी उतर आई। मृदुल ने कहा, और उस नए प्रोजेक्ट के लिए उन्हें तुम्हारे जैसी डिजाइनर की जरूरत है। श्यामली के हाथ में अभी भी वो लेटर था। उसने उसे फिर से देखा। दिल की धड़कन धीरे धीरे तेज हो रही थी, क्योंकि अब उसे साफ समझ आ रहा था, ये सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं था, ये विश्वनाथ का फैसला था, और शायद किस्मत फिर से उसे उसी इंसान के सामने खड़ा करने जा रही थी जिससे वो सालों पहले दूर चली गई थी। कमरे में फिर वही गहरा सन्नाटा उतर आया।